ओम शांति। गीत सुना सभी ने, आप बाबा साथ हैं और क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए वो तो, है ना। क्या क्या चाहिए यार, पुरुषार्थ अर्थ अच्छा करना चाहिए, पढ़ाई पढ़नी चाहिए, योग करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। चाहिए की लिस्ट तो बहुत लंबी है। केवल गीत गाने से प्रगति या परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसको अपने जीवन में लाकर, धारणाओं में लाकर, अगर हम विधि पूर्वक थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, छोटा सा प्रयास भी करते हैं, तो भी धीरे धीरे प्रगति होती है। बिना अटेंशन रखे पुरुषार्थ की स्पीड नहीं बढ़ती है, अटेंशन तो रखना पड़ता है। चाहे लौकिक जीवन में भी या अलौकिक में भी, सभी जगह अटेंशन रखना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। तो बाबा हमें कदम कदम पर अनेक प्रकार की सावधानियां देते रहते हैं, बहुत सारी युक्तियां बताते रहते हैं कि कैसे हमारी प्रगति हो, कैसे हमारे संस्कार परिवर्तन हो, कैसे हम आगे बढ़ते रहें, निर्विघ्न स्थिति हो जाए, मूर्ति कला का अनुभव करते रहें, अनेक प्रकार के पुरुषार्थ को सहज बनाते चलें। तो बहुत सारी बाबा युक्तियां बताते रहते हैं, और जब भी हम पुरुषार्थ के मार्ग पर एक अच्छा संकल्प करते हैं, तो बाबा उस संकल्प में ताकत भर देते हैं, ऊर्जा भर देते हैं, शक्ति भर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना कि बच्चे याद प्यार के पत्र तो भेजते हैं, कार्ड भेजते हैं, लेकिन भेजने से पहले ही बाबा के पास पहुंच जाता है। क्योंकि संकल्प, जब भी हम संकल्प करते हैं तो संकल्प तुरंत बाबा के पास पहुंच जाता है, क्योंकि बाकी सारा मटेरियल तो इसी संसार का है, वो यहीं रह जाता है। तो हमारी संकल्प शक्ति इतनी समर्थ होनी चाहिए, इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वो बाबा के पास पहुंच जाए। इतने प्योर थॉट होने चाहिए, इतने ऊंचे थॉट होने चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन में प्रगति हो सके, जो हम चाहते हैं वो परिवर्तन हो सके, लेकिन लेकिन के पूंछ से मुक्त हो सके। तो आज की मुरली जो है, कौन सी मुरली आज की? अव्यक्त मुरली। पहला पॉइंट है अव्यक्त मुरली। दूसरा, मुरली का हेडिंग क्या था? यथार्थ चार्ट, अर्थात प्रगति और परिवर्तन। तो सबकी प्रगति तो मधुबन में हो ही रही है, है ना, सेंटरों में रहते वहां भी होती है, प्रगति तो हो ही रही है ना। जैसे एक ट्रेन चलती है, भले कोई ट्रेन के लास्ट डब्बे में बैठा हुआ है, लेकिन जा तो आगे ही रही है वो, है ना, पहुंच तो जाएंगी सभी। तो ऐसे हमारे पुरुषार्थ की ट्रेन है, ये निरंतर आगे बढ़ती रहती है। हाँ, कोई आगे वाले डिब्बे से अंदर अंदर ही जाते पीछे चला जाता है, कोई पीछे वाले डिब्बे से आगे चला जाता है, लेकिन उतरते नहीं है। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण जीवन में एक पुरुषार्थ की ट्रेन में बैठे हुए हैं। बाबा का ज्ञान तो मिल गया, अब ज्ञान समझ में भी आ गया, ज्ञान समझ में आ गया तो यात्रा भी हमारी चालू होगी, और इस यात्रा में कई प्रकार के विघ्न भी आते हैं, लेकिन ज्ञान फिर भी भूलता थोड़ा है। अगर कोई बाबा का हाथ छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो बुद्धि से भूलेगा नहीं। बाबा ने कहा, एक बार भी अगर दिल से कहा मेरा बाबा, तो बरसे का अधिकारी है ही है, हट्टी तो एक ही है, पहुंच तो जाएंगे हम सभी। तो प्रगति तो दिन प्रतिदिन हो ही रही है, लेकिन हमारी स्पीड कैसी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाबा कहते बच्चे टेढ़ा वांग का रास्ता चुन लेते हैं, पिछले संडे की मुरली में था ना, सीधा जाने के बजाय टेढ़ा वांग का रास्ता चुन लेते हैं, तो फिर टाइम लग जाता है, जहां समय पर पहुंचना चाहिए वहां फिर लेट हो जाते हैं, जो समय पर हमको अनुभव करना चाहिए समय पर सफलता मिलनी चाहिए, उसमें फिर दूरियां बन जाती हैं। तो ऐसे हमें स्वयं पर अटेंशन रखने की, हमारी ये जो रूहानी यात्रा है, याद की यात्रा है, ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, सेवा की यात्रा है, योग की यात्रा है, धारणाओं की यात्रा है, तो इस यात्रा में हमको हर कदम पर सीखते रहना है। जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ तो यात्रा तो चालू हो गया ना। उस यात्रा में बहुत प्रकार के विघ्न भी आए होंगे सबको, लेकिन सबने पास तो कर लिया ना। छोटे मोटे विघ्न भी आए, बड़े भी आए, लेकिन पास करने की शक्ति आ गई और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तभी तो यहाँ पहुँचे हैं, है ना। तो उन विघ्नों से बाबा कहते घबराना नहीं है, जो पास्ट वाली बातें हो गई उनसे सीख कर वर्तमान में अच्छे संकल्प करेंगे तो फ्यूचर अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, पहले आप सुनाओ क्या क्या कहा, सभी एक एक पॉइंट सुनाओ तो सारे मुरली के सारे सेंटेंस पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, तीन सर्टिफिकेट, हाँ, बाबा से संतुष्ट, हम संतुष्ट या बाबा हमारे से संतुष्ट, दोनों से एक दूसरे संतुष्ट। अच्छा, और तीसरा ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट, और क्या बताया, चार्ट रखना, हाँ, जो एक्यूरेट चार्ट रखते हैं उनकी भी माला बनेगी, उनके नामों की माला बनेगी, और बहुत सारे विघ्न आएंगे प्रकृति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, माया द्वारा, लेकिन वो खेल अनुभव है ना। हाँ, और लेकिन लेकिन की पूंछ नहीं लगानी है, लेकिन वो लग जाती है अपने आप ही। हाँ, वो भी नहीं लगानी है, और विधि पूर्वक अपना चाल रखना, और निमित्त भाव, सारे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ, लेकिन ये बोझ है अपने आप वापस आ जाते हैं। और क्या कहा, निमित्त और निर्माण भाव रखना, वरदान, और ब्राह्मण जीवन में मंगोसा रहना चाहिए, उत्साह नहीं है तो मजा ही नहीं है जीवन का। हाँ, और योग के फायदे बताए, डबल फायदा, लाइट रहेंगे, खुश रहेंगे, और विकर्म विनाश होंगे, भस्म हो जाएंगे, अग्नि का काम करेगा ये, और हाँ, पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, और संबंधों का बोझ। हाँ, ये तीन बोझ थे प्रधान में, और ये कितने पॉइंट याद है सभी को, हैं? पार्टी में, पार्टी में खुशी होती है ना, तो सवेरे से पार्टियां चालू हो जाती है इधर, मुरली सुनते हुए डांस करना, तो सवेरे क्लास चालू होगी ना, उठ के डांस चालू कर देना वहां, ठीक है। और स्मृति और समर्थि, स्मृतियां हैं लेकिन समर्थि चाहिए उसमें, और हाँ, सुखी रहो, खुश रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, और देखो कितने पॉइंट याद है, वो पीछे वाले लाइन वाले, अब उनकी बारी है, पीछे वाले बताओ, संतुष्ट हैं आप तो एकदम। सबसे लास्ट तो फाइनल सर्टिफिकेट तो वही है। तो संतुष्टता के ऊपर बाबा ने क्या किया आज मुरली में कहा, मुरली को छोड़ के, हाँ, संतुष्ट मणि वह है जो जिसके डैश का श्रृंगार संतुष्ट है, क्या जीवन का श्रृंगार संतुष्ट है। तो आज की मुरली में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आज बाबा कहते हैं एक और मेन बाबा ने पॉइंट बताए हैं, वो ये नहीं बताया किसी ने, गिफ्ट दिया है, गिफ्ट, हाँ, एक ब्लड प्रेशर वाला आ गया अभी, और एक और पावरफुल, हाँ, न्यू ईयर का, फिर न्यू ईयर के आगे, हाँ, एक और अभी भी नहीं हुआ, नवीनता और समीप और समान बच्चों को देख लिया उसने, और साल खत्म हो गया, मान लो साल खत्म हो गया, फिर नया साल शुरू हो गया, उसमें क्या बताया बाबा ने, हाँ, क्योंकि वो वरदानी मास शुरू हो रहा है जनवरी मास, तो उसमें एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले तो बाबा ने आज किससे मिलन मनाया बच्चों से, कौन से बच्चों से, विश्व के नव निर्माता बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। तो हम सब कौन है, विश्व के नव निर्माता। तो हम विश्व के नव निर्माता हैं तो हमारी सोच भी कैसी होनी चाहिए, विश्वव्यापी सोच होनी चाहिए, है ना, विश्वव्यापी हमारी मानसिकता होनी चाहिए, विश्वव्यापी दृष्टिकोण होना चाहिए, मना सभी हदों से बाहर। जो बाबा कहते हैं दे जाति पाति राष्ट्र भाषा मेरा तेरा ये सब से ऊपर, तो कहेंगे विश्व नव निर्माता। हर एक के प्रति हमारी सोच कितनी ऊंची होनी चाहिए कि हम हर विश्व की हर आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो हमारी सोच अगर ऐसी नहीं हो और छोटी मोटी सोच में हम फंसे हुए हैं, करना हमको सबका कल्याण है और पड़ोसी से हम दुखी हैं, तो कैसे होगा। तो सवेरे सवेरे ना पड़ोसी को मुबारक देनी, पड़ोसी को माना कौन सा पड़ोसी, जिससे हमारे अंदर थोड़ा अभी भी ऐसे छोटे मोटे मन के भाव हैं, ऐसे वैसे आलतू फालतू संकल्प हैं, तो सवेरे सवेरे उनको क्या करने का, सूक्ष्म शरीर में अपना वरदानी हाथ उनके सिर पर रखना और उसको मुबारक देनी। कौन सी मुबारक, सदा खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, ऐसे, और उससे माफी मांग लेनी। क्योंकि मन में हमारे में भी ऐसा नहीं है कि हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं और घृणा से एकदम मुक्त हो गए हैं, बड़ी सूक्ष्म घृणाएं होती हैं और ये समय पर अंकुरित होते हैं बीज, पता नहीं चलता है वो। कोई अगर हमारे सामने किसी की महिमा कर दे कि ये तो आपसे अच्छा है, तो मन में थोड़ा सा तो आता कि नहीं आता है, मन में ये आना चाहिए हाँ बिल्कुल अच्छा वो, तो उससे हम सीखे कि इसके जैसे हम कैसे बने। तो सूक्ष्म जो पाप है हमारे मन बुद्धि के अंदर बैठे हुए, वो हमको उड़ने नहीं देते हैं, वो ही तो बोझ है। मोटे मोटे बोझ तो हम उतार देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म संकल्पों का बोझ है, अनेक प्रकार के संबंध जो हैं, उन संबंधों को हमने दुख दिया हुआ है संबंधियों को, या उनके बारे में बुरा सोचा हुआ है, वो सारा भी बोझ तो है ना, और वो ही बोझ हमको उड़ने नहीं देता है। जैसे एरोप्लेन में क्या होता है, डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है, अगर थोड़ा सा भी किचरा आ जाए तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा वो। तो बाबा कहते तुम्हारा बुद्धि रूपी विमान है, उड़ान भरो, लेकिन बुद्धि में किचड़ा भरा हुआ है तो उड़ान कैसे भरेंगे। थोड़ा सा जाएगा घुरन ऊपर, धड़ाम से नीचे, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे, और तब तक टाइम ही निकल जाता था। इसी असमंजस की स्थिति में, इसी युद्ध में सारा जीवन चला जाता है। तो अपनी एक लिस्ट बनानी है, सूक्ष्म पुरुषार्थ जो करना है कि जिनसे भी हमारा ऐसे घृणा नफरत द्वेष ईर्ष्या भाव के अंदर बीज हैं सूक्ष्म में, उनको भस्म करना है योग अग्नि से। तो आज बाबा ने विश्व नव निर्माता बच्चों को देखा है ना, क्या देखा है, उनसे फिर कंपैरिजन किया संसार की आत्माओं की, तुलना की उनसे कि संसार की आत्माएं क्या करती हैं, नया वर्ष तो मनाती हैं लेकिन वो नया वर्ष है एक दिन के लिए है, वो तो है हद का चक्कर है, और हमारा है बेहद का चक्कर है, और तुम्हारा ये संगम युग ही नया है, ब्राह्मण जीवन ही नया है एकदम, क्योंकि तुम्हें क्या मिला है, नई नॉलेज मिली है, और नई नॉलेज से क्या क्या हो गया, क्या हुआ, नई नॉलेज से नई दृष्टि मिल गई, नई सृष्टि हो गई, नई वृत्ति हो गई, नए संबंध हो गए, कितना फर्क बढ़ गया। संसार में संबंधों से तो सारा गड़बड़ होती है, बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ संसार के कितने संबंध हैं, ताया काका चाचा मामा फूफी फूफी का फूफड़ वो सब कितने होते हैं, आगे आगे चिंटो पिंटो कितने, फिर तो नानी जब बूढ़ी है तो उसको पता नहीं होता कि मेरी फैमिली वाले कितने बच्चे हैं, कितना दूर से दूर चले जाते हैं, है ना। तो वो तो संबंध कितने जंजीर वाले बंधन वाले बंधन है, सारे संबंध बांध के रखते हैं, और उसमें सारा स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, कोई भी ऐसा संबंध नहीं जिसमें निस्वार्थ भाव हो, कोई भी देख लो आप, सब में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। और बाबा कहते तुम्हारे तो एक ही संबंध है, कौन सा, मात पिता भाई बहने, और उससे ऊपर भी भाई भाई है, तो एक ही संबंध है, तो सारा झंझट ही खत्म हो गया, निभाने की इतनी जरूरत नहीं है। आज इसके पास जाओ, आज मासी के पास जाओ, आज चाची के पास जाओ, आज मामी के पास जाओ, कितने सारे संबंध हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही संबंध हो गया बाबा से, सारे सर्व संबंधों का उससे अनुभव करो। तो ये सारी नवीनता होगी। ब्राह्मण जीवन अर्थात नवीनता भरा जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह भरा जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उड़ती कला वाला जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुशियों भरा जीवन। तो बाबा फिर मुबारक देते हैं ऐसे बच्चों को जो हर समय हर सेकंड नया बनाते हैं, दिन रात हर सेकंड नया नया, नवीनता नवीनता जीवन में। दृष्टि वृत्ति सारी सृष्टि हमारी बदल गई, क्योंकि अंदर का भी संसार तो होता है ना, अब वो सारा संसार ही चेंज हो गया, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन हो गया एकदम। जो पुरानी दुनिया के विचार थे सारे खत्म हो गए, नए विचार भर गए अंदर में, नई ऊर्जा नई शक्ति भर गई अंदर में, तो सारी दृष्टि वृत्ति चेंज होगी हमारी। तो ऐसे बच्चों को फिर बाबा मुबारक देते हैं, बधाइयों के पात्र आत्माएं हैं। कौन कौन सी बधाइयां देते हैं बाबा, कितने संसार में भी बधाइयां देते हैं, कौन सी बधाइयां देते हैं? खुश रहो। और यहां कौन सी बाबा ने बधाइयां दी फिर? ये तो चार, रोते रहो उड़ाते रहो, रोने उड़ाते। तो बाबा कहते शुभ भावना शुभ कामना की बधाइयां, वो तो चार बातें अलग थी वो दूसरी, लेकिन बधाइयां कौन सी हैं? शुभ भावना शुभ कामना की। कितनी बड़ी बात है, बोलने में तो आसान है कि हमारी सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए, लेकिन जब बारी आती तो पता ही नहीं होता कि शुभ भावना क्या होती है उस समय। तो सबसे पहले तो अपने प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है कि स्वयं के प्रति हम शुभ सोचते हैं, दिनचर्या अनुसार चलते हैं, बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो श्रीमत हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तो शुभ भावना शुभ कामना की बधाइयां अपने आप को भी देनी है, इस शरीर से अलग हो के अपना ही वरदानी अथ फरिश्ते रूप का स्वयं पर रख देना है ना। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा शक्तिशाली रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सबका कल्याण करते रहो, सदा निर्विघ्न रहो, सदा उड़ते रहो, सदा उड़ाते रहो, सदा, अभी आप बताओ, सभी मौज में रहो, और पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, और बाबा का परिचय देते रहो, मुस्कराते रहो, दूसरों के आंसू पोंछते रहो, दूसरों को भी मुस्कराना सिखा दो, दूसरों के दुख हर लो, रहम दिल बनो। तो कितने सारे वरदान है। तो एक सेंटेंस पर रुकन बाबा ने चार ही बताया, आगे अपना काम करना ना, होमवर्क तो हमको दिया है, बाबा तो शॉर्टकट में देंगे ना। जैसे मैथमेटिक्स की किताब में क्या होता है, एग्जाम्पल तो एक का ही होता है, बाकी उसके आगे कितने क्वेश्चन होते हैं वो तो हमको ही सॉल्व करने होते हैं। तो बाबा भी हमको थोड़ा क्लू दे देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, बाकी काम तो अपने को करना है, ठीक है। तो बधाइयां दी बाबा ने, कौन सी बधाइयां दी? शुभ भावना शुभ कामना की बधाइयां। अभी उसकी लिस्ट बतानी है कि शुभ भावना शुभ कामना की कितनी बधाइयां हो सकती हैं, अपना होमवर्क करना आगे। और बधाइयों के बाद क्या बाबा ने बोला, संसार वाले क्या करते हैं? एक दिन के लिए नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं, खाना तो भूल ही गया। तो संसार वाले नाचते हैं और हम क्या करते हैं? खाने से पहले खा के नाचेंगे तो भारी हो जाएगा काम। हाँ, तो जैसे मुरली सुनते हैं तो मन हमारा नाचता है, मन म्यूर नाचता है ना। नहीं तो मुरली में भी दो प्रकार का होता है नाचना। हाँ, फिर वो ऐसे झूलते हैं वो, तो मन, और मन कैसे नाचेगा अगर मुरली के पॉइंट हम थोड़ा लिखेंगे, भले सारे मुरली नहीं लिखो, शॉर्टकट में लिखो छोटे छोटे, और उसको बुद्धि में घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो मन का शुद्धिकरण हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, ज्ञान रत्न बीच में ठहरने लगेंगे। लेकिन दूसरी नहीं तो दूसरी बातें मच्छर बनकर काटती रहेगी अंदर ही अंदर, अंदर जो घृणा नफरत बनी वो जाएगी नहीं, क्योंकि हमने तो नए विचार भरे नहीं बुद्धि में, तो नई रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो नाचना और गाना, अंदर ही बाबा के महिमा के गीत गाते रहो, अपने महिमा के गीत गाते रहो, है ना, अंदर ही अंदर, दूसरों को नहीं बताना कि मैं इतना अच्छा हूँ या इतनी अच्छी हूँ, लेकिन अपनी विशेषताओं के गुण, और देखना है कौन कौन सी विशेषताएं भी बाकी हैं, है ना, बाबा के गुणगान करो कि बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया, है ना, जो पूरी सृष्टि का मालिक है हम उसके बालक हैं। कितना बड़ी बात है, कितने बाबा कहते तुम्हारे जैसा भाग्यवान, ने कौन से शब्द बोला था बताओ, तुम्हारे जैसा डैश संसार में कोई नहीं है, खुश नसीब, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है, जो खुशी से खजाने से संपन्न है, देवताओं को वो खुशी नहीं है, बताओ तो कितनी बड़ी बात है ये कि देवताओं से भी ज्यादा हमारी खुशी है। तो अब हमको खुशियों का खजाना मिला हुआ है, वाह खुशनसीब भी वाह। तो खुशी के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, खुशी इतनी होनी चाहिए कि बात मत पूछो। बाबा कहते हैं खुशी तो तुम्हारे में इतनी चाहिए होनी चाहिए कि तुम्हारे कितनी होनी चाहिए, तुम्हारे सिर की नस फट जानी चाहिए, दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए बाबा ने कहा। लेकिन वो अगर वो नहीं तो सिर दर्द से नसें फटती रहती हैं, क्योंकि खुशी को तो हमने स्थान दिया ही नहीं बीच में, खुशी वाली बातें जो वो तो मन में रखी नहीं हमने। तो सिर की नाक, सिर की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक खुशी खुशी रहनी चाहिए, खुशी की खग्गियां मारते रहो। तो खुशनसीब हम बच्चे हैं, सारे संसार की आत्माओं में से हमको कितनी खुशी मिली है। खुशी के लिए संसार में क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, बावन बता ना पार्टियां करते हैं, है ना। और वो पार्टियां करते क्या करते हैं फिर, वो हाँ तो एक दिन के लिए पार्टी करेंगे, खा पी के आएंगे, थोड़ा पी के भी आएंगे, भले नाली में पड़ा हुआ वो, लेकिन फिर भी उसको नशा रहता है। देखो संसार में एक नशा करने वाला भी एकदम अपने हाईएस्ट सिंहासन पर बैठ जाता है, उसमें अपने को राजा समझता है। और हमको तो बाबा शुद्ध नशा पिलाते हैं डेली, ज्ञान अमृत का नशा, और फ्री में। वहां तो कितना खर्चा, आजकल तो बहुत महंगी हो गई है बोला, हाँ घरों में कितनी मुसीबत ही मुसीबत होती बात मत पूछो, लेकिन फिर भी पीना नहीं छोड़ते हैं। और बाबा का ज्ञान कैसा है, बिना कौड़ी के मिल गया, कोई खर्चा नहीं है। तो ये कितना नशा, रूहानी नशा होना चाहिए, है ना। वो नशे में गिर भी जाते हैं, सारी दुनिया भूल जाते हैं वो, और ये वाला नशा हमको बाबा का नशा लेते रहे, लेकिन फिर भी हम पुरानी दुनिया पकड़ के रहते हैं। तो ये नशे को हमको बढ़ाना है। बाबा कहते तुम्हारी तो अमृत वेले से पार्टी पार्टी है। अमृत वेले सबसे पहले बाबा से मिलन बनाते हैं, संगठन में बैठ के सर्वसंबंधों का अनुभव करते हैं, तो पार्टी होगी ना। फिर उसके बाद मुरली में, संगठन में मुरली सुनते हैं, तो मुरली में नाचते हो गाते हो, है ना। और क्या खाते हो, ब्रह्मा भोजन। तो वास्तव में वो वाला ब्रह्मा भोजन नहीं बाबा ने कहा है, वो तो है ही वैसे खाने वाला, लेकिन ज्ञान का ब्रह्मा भोजन। नहीं तो हम सोचेंगे बाबा ने बोला तो खूब खाओ उसको, ऐसा नहीं करने का, नहीं तो वो भारी भी पड़ जाएगा, ज्यादा खा लिया, ये बाबा ने कहा हुआ है। ज्ञान का ब्रह्मा भोजन खाना है, ब्रह्मा मुख द्वारा जो भगवान के महावाक्य उच्चारित हुए वास्तव में असली ब्रह्मा भोजन वही है, ज्ञान घास, तो वो खानी है। ज्ञान का ब्रह्मा भोजन रोज तैयार करना है, सवेरे सवेरे जैसे बाबा गर्म गर्म हलवा तैयार करते हैं, तो अपने अपने सवेरे सवेरे रोज हलवा पूड़ी खीर ज्ञान की सब तैयार करनी है। ज्ञान की खीर कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या क्या सामग्री चाहिए थी खीर के लिए, पहले तो खीर का नाम सुनते मुख में पानी आ जाता है और खुशी आ जाती चेहरे पर कि अभी हम खीर खाएंगे, भले बनी नहीं है अभी, वो खुशी चालू होगी नहीं होगी। तो हमको ज्ञान की खीर बनानी सवेरे सवेरे, तो क्या करेंगे उसके लिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, दूध पानी चीनी और जिसको शुगर हो तो चावल ड्राई फ्रूट्स। तो ये सब चीजें ज्ञान से रिलेटेड करनी है, तो यहाँ कौन सा दूध डालेंगे, ज्ञान का दूध और पानी, ज्ञान का जल और मीठा कौन सा डालेंगे, उसमें बाबा को ही डाल दो। बाबा कहते मैं सक्रियन हूं, इतनी मीठी सक्रियन हूं, तो उसमें बाबा को डाल दो, तो सब आ गया उसमें, तो फिर खाते रहो उसको, जैसी मीठी सक्रियन हमारे मुख में है, तो योग सहज हो जाएगा। योग को रमणीक बनाना है, भारी नहीं करना है, नहीं तो भारी करते करते इतने साल बीत गए फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। एकदम सहज सिंपल नेचुरल नेचुरल होनी चाहिए, है जुगाली नहीं करते हैं फिर बदहाजमी हो जाती है, पछतानी है ज्ञान। तो ज्ञान को ना रमणीक तरीके से चेंज करना उसको सारा। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे पार्टी, आपकी तो डेली पार्टी होती है संगठन में, बाबा से मिलन मनाते हैं, मुरली सुनते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। अच्छा वो भोजन भी खाते हैं उसको भी प्यार से याद से खाओ, एक एक इट्टी बाबा की याद में खाओ, जैसे मैं लाइट का भोजन कर रहा हूँ, वो सारा भोजन करने से मेरे शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है, मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ, मैं आत्मा फरिश्ता बन रहा हूँ। तो अच्छे अच्छे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो भोजन भी सकारात्मक ऊर्जा का काम करेगा, हमारे शरीर को वो पवित्र भोजन बनाएगा, वो शरीर भोजन भी। नहीं तो अगर भोजन हम इधर उधर की बातें करते हैं ना, हमने देखा कई बार अगर इधर उधर की बातें करते तो भोजन का कोई असर नहीं होता, बाद में भोजन खाने के बाद खुशी नहीं होती है, और जिसने याद में भोजन किया उसके चेहरे पर खुशी आएगी। और बातें क्योंकि भोजन के समय मौन रहना बड़ा टेढ़ी खीर है, लेकिन हमारी जो मन की स्थिति है, अंदर हमारे क्या विचार चल रहे हैं, वो तो हम खुद अटेंशन रख सकते हैं ना अपने ऊपर। तो पहले से अगर लंबे समय की आदत पड़ेगी तो फिर नेचुरल संस्कार हो जाएंगे मेरे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आ गई, अभी छोटी दीदी भोजन कर रही है, बड़ी दीदी आ गई सेवा के लिए बुलाने के, कुछ बोलना तो पड़ेगा उस समय, या तो हमारा पक्का नियम हो जाए ऐसे अपने में अचल डोल हो जाए ऐसे। तो हमको भोजन करते समय भी सूक्ष्म में हमारा अंदर ही अंदर कौन से संकल्पों का पुरुषार्थ चल रहा है वो स्वयं ही अटेंशन रखना पड़ेगा। तो ब्रह्मा भोजन खाते भी हमारी स्थिति एकदम जैसे बाबा से मिलन मनाते हुए, जैसे रूहानी पार्टी में हम बैठे हुए हैं, जैसे फरिश्तों की महफिल लगी हुई है, जैसे देवता ही ब्रह्मा भोजन के लिए तरस रहे हैं और स्वयं भगवान हमारे मुख में भोजन डाल रहा है, कितनी खुशनसीबी है। तो चिंतन को चेंज करना है, चिंतन को चेंज करेंगे सारी चिंताएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब तक हमने चिंतन को चलाया ना तो जीवन चिंताओं से घिरा रहता है, चिंता ही चिंता हमको खाती रहती है, एक अज्ञात सी चिंता बनी रहती है, पता ही नहीं कौन सी चिंता लगी है, इसका भी पता नहीं होता है, सूक्ष्म डिप्रेशन। और वो लंबे समय तक अगर ठहर जाए तो वही डिप्रेशन में बदल जाता है फिर, क्योंकि हमने अपने आप को चेंज करने का प्रयास ही नहीं किया। तो करना तो पड़ेगा ना कुछ नए संकल्प। बाबा ने क्या कहा, नवीनता, हर बात में नवीनता चाहिए, ठीक है। तो ये थी बधाइयां। फिर बाबा ने क्या कहा, ये ब्राह्मण जीवन किस में मजा है, अगर ये ब्राह्मण जीवन में नहीं है तो मजा नहीं है। क्या, उत्साह। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह भरा जीवन, अगर जीवन में उत्साह नहीं है तो मजा नहीं है। और उत्साह कैसे आएगा, कैसे उत्साह चढ़ेगा, ज्ञान और योग से। हाँ जी, मंथन करने से, ज्ञान का मंथन करेंगे तो भी उत्साह आएगा। आपस में चर्चा करो, अभी जैसे देखो क्लास में आने से पहले बैठे थे तो साइलेंस में थे, अब जैसे ज्ञान की चर्चा की कितने सारे पॉइंट आ गए सभी ने, कैसे माहौल चेंज हो गया एक दिन में, सबके चेहरे पर खुशी आ गई। अच्छा, वो दिमाग पर भी थोड़ा प्रेशर डाला पॉइंट याद करने का, नहीं तो अगर प्रेशर नहीं डालते इस पर तो फिर क्या होता है, सुन रहता है, डल हो जाता हमारा दिमाग। इसलिए बाबा कहते डल हेड नहीं बनना है, स्वयं बुद्धिमानों का बुद्धिमान आया हुआ है और हमारी बुद्धि ऐसे रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। पिछले संडे बाबा ने मुरली में कहा था कि ब्राह्मण जन्म लेते ही मैंने तुम बच्चों की बुद्धि में क्या किया है, नहीं डैश भर दी है, अभी तो याद आ जाएगा, नहीं ब्राह्मण जन्म लेते ही मैंने तुम बच्चों की बुद्धि में डैश भर दी है श्रीमत, याद आया कि नहीं, आ गया याद कि ऐसे यहां कर रहे लगता आ गया। तो बाबा ने जन्म तो श्रीमत भर दी हमारी बुद्धि में, तो हमको याद रखना, पिछले संडे को बोला था अगर वो धीरे धीरे हमको हर एक दिन हम उसको याद रखें एक ही सेंटेंस सात दिन में, जब तक अगली मुरली ने कि बाबा ने मेरी बुद्धि में श्रीमत भरी हुई है, फिर उसका आगे याद आएगा, अच्छा कौन कौन सी श्रीमत भरी हुई है, पवित्रता के बारे में, धारणाओं के बारे में, ज्ञान में कैसे चलना है, कमल पुष्पमान कैसे रहना है, घर को कैसे संभालना है, अनेक प्रकार की श्रीमत भरी हुई है। तो वो श्रीमत हमारे संस्कार बन जाएंगे नेचुरल। तो ये ब्राह्मण जीवन हमेशा उत्साह भरा जीवन, और ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन क्या बताया आज की मुरली में था ना, पढ़ना और पढ़ाना, ये पिछले थे पहले का था, आज की मुरली में नहीं था, यह भी ठीक है, लेकिन आज क्या बताया, ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन क्या है, डैश को डैश बनाना। हाँ देखो आगे, देखो याद तो है, बोलते नहीं है, शर्माते हैं। निराशावादी को आशावादी बनाना, क्योंकि संसार में क्या चारों तरफ निराशा ही निराशा है, सब तरफ निराशा ही है। अगर हम अपने ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ नहीं करते तो निराशा ही होती है, भले बाहर से हम जितना मर्जी दिखाई दे रहे हैं कि हम मुस्कुरा रहे हैं खुश हैं, लेकिन आंतरिक जो खुशी ना, वो तो और ही चीज़ होती है, वो बिना पुरुषार्थ के खुशी नहीं आएगी। भले हम जितना मर्जी घूम फिर ले या खा पी ले, पिकनिक पार्टी कर ले, जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन खाओ, नाचते गाते रहो, ऊपर ऊपर से कर ले, अंदर की खुशी नहीं होगी वो। तो निराशावादी को आशावादी बनाना ये हमारा ऑक्यूपेशन है। तो हमारे जीवन में जरा भी निराशा आनी नहीं चाहिए बिल्कुल। और निराशा आती कब है, जब हम पास्ट की बातों को सोच लेते हैं। बाबा ने कहा बीती सो बीती, बीती आज भी मुरली में था, पिछली बातों को भूल, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ और भविष्य को, भविष्य में सफलता कैसी उसके उसको देखो, आप श्रेष्ठ भविष्य को देखो, तो पास्ट को छोड़ देने का है। तो हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, निराशावादी को आशावादी बनाना। और क्या बताया बाबा ने, इस तपस्या वर्ष में क्या करना है, छह मास बीत गए तपस्या वर्ष के, तो बाबा ने कहा छह मास में तपस्या वर्ष में क्या किया, जीवन में अलौकिकता आई, नवीनता आई, अपनी चाल देखो, अनुभव तो अच्छे हो रहे हैं, योग तो अच्छा है, धारणा भी अच्छी है, आगे भी बढ़ रहे हैं, अटेंशन भी है, सेवाएं भी अच्छी हो रही हैं, फिर लेकिन आ गया बीच में, लेकिन लेकिन का पूंछ लग जाता है। तो ये सारी बातें तो होगी, तो फिर लेकिन क्यों आया, फिर लेकिन क्यों आया, हाँ कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो परसेंटेज बाबा ने कहा इसको बढ़ाओ, धारणाएं अच्छी हैं, योग भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो हमारी संतुष्टता होनी चाहिए, मन की संतुष्टता, वो नहीं होती है, और वो नहीं भी होनी चाहिए, धीरे धीरे रहनी चाहिए, नहीं तो फिर सूक्ष्म में अहम भी आ जाता है कई बार। पुरुषार्थ में असंतुष्टता तो बनी रहनी चाहिए, लेकिन बाबा जो कहते हैं उसके अनुसार नहीं। जैसे बाबा कहते हैं विधि पूर्वक पुरुषार्थ करो तो प्रगति और परिवर्तन का अनुभव होगा, तो वो हमको वो भी अनुभव होना चाहिए कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस मंजिल को हमको अचीव करना है, प्राप्त करना है, वो हमको वो भी अनुभव होना चाहिए। तो पुरुषार्थ की स्पीड को ही बढ़ाना, हाँ ज्ञान और मंथन का पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी आगे चलती रहेगी, ज्ञान मंथन का पेट्रोल। तो ये थी बात। तो फिर बाबा ने कहा इनाम लेने के पात्र कौन से बच्चे हैं, जिनमें तीन सर्टिफिकेट ले लेंगे। सबसे पहला, स्वयं को साक्षी होकर चेक करो, स्वयं के चार्ट को चेक करो, मन से, सच्चे मन से, दिल से, कि जितना होना चाहिए उतना है, जो बाबा ने कहा उतना है, वो चेक करना भारी पड़ जाता है। जो बाबा तो कितना कितना ऊंचा कह देते हैं, लेकिन हमको दिल शिकस्त नहीं होना कभी भी, वो तो हुआ ही पड़ा है, ऐसे हमेशा सोचना, हुआ ही पड़ा है वो। और दूसरा सर्टिफिकेट, बाप हमारे से संतुष्ट है, जो विधि बताई बाबा ने उस अनुसार वृद्धि हमारी हो रही है, उसी अनुसार सिद्धि हो रही है। और तीसरा मुख्य सर्टिफिकेट, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट है। तो सभी संतुष्ट होंगे, सबसे पहले पड़ोसी मना कर देगा जो हमारे साथ में रहता है, बोलेगा नहीं मैं तो दूंगा ही नहीं, कर लो जो मर्जी अभी तो संतुष्ट करना उसको भी, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये, है ना। पहले पहले तो बाबा ने स्वर्ग के सपने दिखा दिए, हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, जब पुरुषार्थ शुरू होता है तो क्या क्या नजर आता है बहुत प्रकार के सीन सीनी नजर आते हैं, है ना। तो ये तीन प्रकार के सर्टिफिकेट हम लेंगे तो इनाम के पात्र बन जाएंगे। नंबर वन, बाबा ने कहा उनके नामों की मालाएं बनाएंगे, फिर मालाएं तैयार होंगी उनके नामों की, है ना। लास्ट में पता चलेगा कि जो पांडव वन में सेवा करने आए थे वो नंबर वन में आ गए सभी, हैं, जो भट्टी करने आई थी बहने वो भी सब नंबर वन में आ गए। तो यहां हम रहते हैं, यहां रहने का जो सौभाग्य है, यहां रहकर जो पुरुषार्थ किया जा सकता है, घर में थोड़ा मेहनत लगती है सभी तो अनुभव, और सेंटर में भी थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि यहां तो माहौल ऐसा बना हुआ है, बाबा ने तपस्या की, दादियों ने तपस्या की है, तो हमको यहां रह के टाइम वेस्ट नहीं करना है। समय सबसे बड़ा धन है, ये धन हमारे हाथ से निकल ना जाए कहीं, अमूल्य पूंजी है ये, जीवन भी बड़ा कीमती है। तो जितना समय हम यहां रहते हैं तो अच्छा पुरुषार्थ कर ले हम, और सहज पुरुषार्थ, और वो हमारी नेचर नेचर होगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, ये तो साल पूरा हो रहा है, अभी अव्यक्त मास आ रहा है जनवरी मास, अगर आपने नहीं किया तो उसको भूल जाओ, छह महीने नहीं किया तो कोई बात नहीं छोड़ दो, लेकिन आने वाले 30 दिन लगातार अचल अडोल एक रस स्थिति बनाई तो ये जीवन का नेचुरल नेचर संस्कार बन जाएगा, और ये गिफ्ट हो जाएगी आप बच्चों के लिए। तो यहां रहना कम बात नहीं है, लेकिन टाइम उतना सफल होना चाहिए। अगर यहां रहकर हमारा सौभाग्य है लेकिन अगर टाइम वेस्ट किया तो दुर्भाग्य भी है, सहज काम नहीं है। यहां भी अटेंशन तो रखनी पड़ती है, क्योंकि जिस वातावरण को यज्ञ के पूर्वजों ने बनाया है उस वातावरण को अगर हम उसमें विघ्न डालें, उसको खराब करें, तो पाप चढ़ जाएगा इसके ऊपर। उस वातावरण को तो और शक्तिशाली बनाना है, ताकि आने वाले भाई बहनें भी उसका अनुभव कर सकें। मधुबन में भाई बहने आते किस लिए है? अपनी स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए कि चलो चार दिन में बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, मधुबन जाके अच्छी तपस्या करेंगे। तो यहां आकर वही तपस्या करनी है, ताकि हमारा पद्म कदम में पद्म जमा हो जाए, टाइम वेस्ट न जाए, हर सेकंड हमारा जमा होते रहना चाहिए। लेकिन माया पत्नी कब एंटरफेयर कर जाती बीच में? बाबा ने कहना यथार्थ तपस्या की निशानी क्या है, आज की मूल्य में था ना, यथार्थ तपस्या की निशानी प्रगति किस किस में? तीन बातों में। कौन कौन सी? एक पहली, एक दूसरी, एक तीसरी। सो की चेकिंग, और कर्म, संबंध और संस्कार, तीनों में नवीनता, तीनों में परिवर्तन। आने का परिस्थितियां भी आएंगी, चाहे वो प्रकृति के द्वारा, चाहे वो माया के द्वारा, चाहे वो व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात संबंधों के द्वारा। तो व्यक्ति, संबंध, कर्म, संबंध, संस्कार, ये तो परिस्थिति तो आएंगी, माया के द्वारा भी आएंगी, मायावी संस्कार तो भी अंदर बैठे हुए ना, जन्म जन्म के संस्कार अंदर में, तो वही हमको, अपने संस्कार ही हमको तंग करते रहते हैं। दूसरों के संस्कारों से हम कम तंग होते हैं, दूसरों के संस्कारों से तंग तब होते हैं जब उन संस्कारों को हम अपना समझ लेते हैं, जबकि वो हमारे है ही नहीं। हमारे तो ओरिजिनल नेचर, बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी क्या है, अपने अनादि संस्कारों को देखो, परमधाम के कौन से संस्कार हैं, जो आत्मा सतो गुण है, वो सात गुणों से सुसज्जित है, एकदम श्रृंगारित है वो, ज्ञान गुण, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद से। अपने अनादि संस्कारों को देखो, देवता संस्कार कौन से हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला, संपूर्ण संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रमोद। फिर उसका आगे विस्तार करो, सर्वगुण कौन कौन से हैं, उनको बुद्धि में उनकी माला पहनो, 36 गुणों की माला, महसूस करो जैसे योग में बैठे हैं और मैं 36 गुणों की माला पहनी है ना। आने वाले मूल्य में, शायद कल या परसों के मूल्य में आएगा, कि जब भी योग में बैठते हो तो ज्ञान का चिंतन करना भी जरूरी है, ज्ञान की वर्षा होती रहनी चाहिए तो योग अच्छा लगेगा। तो ज्ञान का चिंतन करना अनिवार्य है। तो हमारे कौन से अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, उसका चिंतन को, पूज्य स्वरूप, मंदिरों में कितनी पूजा हो रही है, तो अभी तो हम चैतन्य में हैं, वो मंदिरों के देवी में आगे जाते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं लोग, तो हमारे आगे आने से तो उनके सारे दुख दूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे आगे कोई आए और हम अपना दुखड़ा चालू कर दें। कोई बात नहीं बहन जी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। उनके बाबा ने कहा तुम निराशावादी को आशावादी बनाने वाले हो, उनमें जीने की उम्मीद जगे, खुशियों की उम्मीद जगे, उनमें कोई जीने की एक ललक पैदा हो जाए। हाँ, जीवन होना चाहिए तो हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए, है ना। संसार में तो अभी तो कितने एग्जाम्पल हो गए, ब्रह्मा कुमारी से का ज्ञान तो बाबा की प्रत्यक्षता धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितनी होती आ रही संसार में। ये तो वास्तव में बाबा हमको चांस दे रहा है कि अभी भी अपने आप को सुधार लो, नहीं तो बाद में देख लूंगा एक एक को। वो भी बोला बाबा ने, एक एक की चमड़ी, हाँ चांस है फिर भी। तो ये अभी भी चांस मिल रहा है सच मुझे, ये तो बाबा का बार बार रहम कृपा हमारे पर बरस रही है, यही उसकी आशीर्वाद है। नहीं तो बाबा तो एक चुटकी में कुछ भी हो सकता है। मौका दे रहे हैं कि चांसलर बन जाओ, कोई भी चांस नहीं छोड़ो, नहीं तो प्रत्यक्षता तो एक सेकंड की बात है। तो हमको अभी ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, वो समर्थ स्थिति का अनुभव करना है। तो कर्म में नवीनता, संबंधों में नवीनता, संस्कारों में नवीनता। संस्कारों में नवीनता कैसे लाएंगे? जो ये बताया तीन बातें कि हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। संबंधों में नवीनता कैसे लाएंगे? सर्व संबंध बाप से हैं। अब घर में रहते हैं तो घर में तो सभी के संबंध है ना, तो उनको क्या करेंगे? आत्मा रूप में देखेंगे, दृष्टि देंगे, और सामने वाला कोई मानता नहीं तो पकड़ के देंगे, वो सवेरे सवेरे फिर ले जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल में, बोलेंगे इनको कुछ हो गया। तो बाह में नवीनता कैसे लाएंगे? अंदर ही अंदर, एक ही सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। घर में जो रहते हैं ना, तो नेगेटिव भावना नहीं रखनी किसी, भले कोई कैसा भी है, बाबा ने कहा काले कोयले जैसा भी है फिर भी उसको क्या समझो, फरिश्ता समझो। भले कितना भी रावणों का रावण भी हो लेकिन फिर, क्योंकि ओरिजिनल संस्कार तो उसके परम धाम के हैं ना, तो ओरिजिनल संस्कार उसके देखो, ये बच्चे बाबा के बच्चे हैं, ये पति बाबा का पति है, ये पत्नी बाबा की पत्नी, बाबा के बच्चे हैं सारे। तो नवीनता चाहिए हर चीज में, तो कर्म में नवीनता, संबंध में नवीनता और संस्कार में नवीनता चाहिए। और बाबा ने कहा याद इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए जो डबल अनुभव हो, कौन कौन सा, कि योग अग्नि से हमारे विकर्म भस्म हो रहे हैं और उसका परिणाम खुशी और हल्कापन। और इसके लिए पावरफुल याद के लिए क्या बताया, क्या करना पड़ेगा, पावरफुल याद का प्रयोग होगी, चार्ट कैसे बढ़ेगा, दो बातें बताई, स्मृति और समर्थि, के बच्चों ने स्मृति तो अच्छी रहती है लेकिन उसमें क्या चाहिए, समर्थि चाहिए। खाली बाबा का मैं बच्चा हूं इससे नहीं, उसमें समर्थि चाहिए, कौन से बाबा का बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान का, और कौन से बाबा का बच्चा हूं, बाबा की टाइटल याद करो, ज्ञान सूर्य बाप का बच्चा हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य, सारे संसार की आत्माओं को, आत्माओं के विकारों को खा करके रख दूंगा, ऐसे समर्थ विचार चाहिए। और समर्थी संसार में देखो जब गुस्सा आता व्यक्ति को कितना उसको समर्थी आ जाती है ना, तो हमें ज्ञान के संकल्प, शक्तिशाली संकल्प आने चाहिए। उसमें गुस्से में क्या होता है, आदमी का सारा खून अंदर से पूरा घूम जाता है पूरा शरीर में, तो हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि पूरे खून में समा जाए वो, एकदम जो डलनेस शरीर की एकदम तंदुरुस्ती आ जाए, चुस्ती फुर्ती आ जाए, लगे जैसे 11,000 का करंट लग गया एकदम, संकल्पों में इतनी ताकत है। और सबने अनुभव किया होगा कि जब शक्तिशाली सवेरे सवेरे संकल्प करते हैं तो सुस्ती गायब हो जाती है। अगर हम खाली बैठ रहेंगे मैं बाबा का हूं और बाबा मेरा है बस, इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा समृद्धि तो है लेकिन समर्थि चाहिए। मैं बाबा का बहुत प्यारा बच्चा हूं, लाडला बच्चा हूं, सुखीला बच्चा हूं, नहीं उसमें और समर्थि चाहिए, शक्तिशाली संकल्प। मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूं, सारे परम धाम की पवित्रता, पवित्रता के सागर की सारी पवित्रता मुझ में आ रही है ना, और पूरी मुझ में समाती जा रही है, पूरी नसों में दौड़ रही है, रग रग में दौड़ रही है, खून में दौड़ रही है, सबके खून में दौड़ रही है। और ये साधारण लोग नहीं है, सारे आगे बैठे हुए इस संसार को पलटा देने वाले हैं सारे, ये फरिश्ते हैं, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। जिस सोमान में हम शक्तिशाली सोमान में रहते हैं उसी सोमान से दूसरों को भी देखना है, ऐसा नहीं कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और ये ऐसे ही है, ऐसा भी होता कई बार हम अच्छा योग करके आएंगे ना तो लगेंगे हमारी स्टेज अच्छी है, सामने वाला ऐसे ही ऐसे टाइम चला के लगता है, नहीं हम अच्छी स्टेज में रहते तो सबको अच्छी स्टेज में स्थिति में उसी स्थिति में देखना है, उसी स्मृति से उसी दृष्टि से। बाबा ने क्या बोला, नई नॉलेज मिली तो वृत्ति नई, दृष्टि नई, सृष्टि नई होगी, तो नई सृष्टि है, ये सब परम पवित्र आत्मा में बैठी है, पवित्र परम पवित्र आत्माओं का अवतरण हुआ है संसार में। ये जहां हम बैठे हैं या ब्राह्मण का परिवार जितना भी है पूरे संसार में, सब कौन सी आत्मा है, सारे संसार को पवित्रता की रोशनी देने वाली हैं, सारे संसार की आत्माओं के आंसू पोषने वाली आत्माएं हैं, सारे संसार को नवीनता प्रदान करने वाली आत्माएं हैं, सारे संसार के दुखों को दूर करने वाली आत्माएं हैं, सारे संसार की आत्माओं को खुशी प्रदान करने वाली आत्माएं हैं। तो नए नए संकल्पों में उन उस स्मृति में समर्थि आनी चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, तो नवीनता होगी। तो ऐसे नए संकल्प करने हैं ताकि पावरफुल योग हो, शक्तिशाली संकल्पों से ही शक्तिशाली योग होगा, साधारण संकल्पों से साधारण योग, सीधी सी बात है। और बाबा ने आज किससे मुलाकात की, कौन सी पार्टी थी आज, हाँ कुमारियों का संगठन, क्या बोला कुमारियों को, एक तो आगे बैठी हुई है, यहां भी आगे बैठी हुई है, और क्या बोला, आगे बैठना अर्थात आगे बढ़ना, और गिरना नहीं है, हाँ गिरना नहीं है, पक्का बनना है, एक सेंटर अगर हिम्मत है तो आगे आगे दिखाए, हाँ अगर हिम्मत है तो कोई रोक नहीं सकता है, स्वयं की आकर्षण होती है तो रोकने का वो संकल्प आता है उन आत्मा को, अगर हमारी हिम्मत है, हमारे संकल्प हैं तो हमको कोई भी रोक नहीं सकता है, हमारी ही कमजोरी रोकने का कारण बन जाती है। स्वयं सर्वशक्तिवान का साथ हो तो किसी को रोकने का संकल्प कैसे आ सकता है हमारे इसमें? अगर कोई आएगा भी तो एक सेकंड में किनारे हो जाएगा, वो निर्विघ्न हो जाएगा। तो कितनी सारी बातें थी, और वरदान क्या बताया था आज का, कौन कौन से बोझ बाप को दे दो, तीन प्रकार के बोझ। पुरुषार्थ का बोझ, ये नहीं सोचना मुझे पुरुषार्थ मेरे से होता ही नहीं है, क्या करूं, बोझ पहले से रखा हुआ है, पुरुषार्थ करना ही नहीं है तो क्या करना फिर, पुरुषार्थ नहीं करना क्या करना है, मौज मनानी बाबा से, मौज बाबा ने कहा तपस्या अर्थात मौज मनाना, नाचना गाना, बाबा की महिमा करो, बाबा के गुणों की महिमा करो। तो नवीनता होनी चाहिए, पुरुषार्थ का बोझ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो संस्कार पहले से बनाने पड़ेंगे तो है ना, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत में मोहब्बत समाई हुई है, इस मेहनत में बहुत सुख समाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है, इस मेहनत से सारे हमारे विघ्न टल जाते हैं, जीवन खुशियों भरा बन जाता है, एक आत्म संतोष की जागृति होती है अंदर में। तो पुरुषार्थ का बोझ नहीं, सेवाओं का बोझ नहीं, और तीसरा संबंधों का बोझ नहीं। ये सारे संबंध किसके हैं, बाबा के हैं, कौन कौन से जो भी है तो सब संबंधी उसके हैं, अपना तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो कितनी सारी बातें थी सारी, और श्रृंगार कौन सा करना है, संतुष्टता का श्रृंगार, कौन बन जाएंगे वो, संतुष्ट मणि, जो संतुष्ट मणि है भाई जीवन में संतुष्टता का श्रृंगार करते हैं। तो कितनी सारी बातें थी, तो सबसे पहली बात शॉर्टकट में रिवाइज कर देते हैं, सबसे पहली बात बाबा ने किसको देखा, विश्व नव निर्माता आत्माओं को, क्या देखा उसमें, चार बातें, नई नॉलेज मिली तो क्या हुआ, नई दृष्टि हो गई, नई सृष्टि, नई वृत्ति हो गई, दिन रात संकल्प सेकंड सब नया नया हो गया, और संबंध भी नए हो गए। फिर बाबा ने पात्र बधाइयां दी, कौन सी बधाइयां दी, शुभ भावना शुभकामना की बधाइयां, उसमें चार प्रकार की, सदा खुश रहो, सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, शक्तिशाली रहो। फिर बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे जैसा खुशी नहीं संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि खुशियों से खजाने से संपन्न हो तो खुशी खुशी बांटो, नाम ही रख लो खुशी की देवी हूं मैं, खुशी का देवता हूं, और बाबा ने टाइटल भी दिया हुआ है ना। और क्या बाबा ने कहा, फिर तपस्या वर्ष में नवीनता लाओ, किस चीज में नवीनता लानी है, योग तो अच्छा है, धारणा भी अच्छी है, टेंशन भी है, सेवा भी हो रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका पूंछ काट देने का है, उसमें तीन प्रकार के सर्टिफिकेट तो इनाम मिलेगा, स्वयं को साक्षी बनकर चार्ट चेक करना, मनसा मन और बुद्धि से दिल से कितना हम स्वयं से संतुष्ट रहते हैं, फिर दूसरा सर्टिफिकेट बाबा हमारे से कितना संतुष्ट रहते हैं, तीसरा अपने ब्राह्मण श्रेष्ठ योगी जीवन से परिवार वाले कितने संतुष्ट रहते हैं, और फिर क्या कहा बाबा ने, यथार्थ तपस्या अर्थात कर्म संबंध संस्कार में नवीनता, फिर पावरफुल योग के लिए स्मृति, समर्थ स्मृति, शक्तिशाली स्मृति, और वरदानी मास में अगर 30 दिन भी, बाबा ने कहा चलो 6 मास बीत गए, अगर 30 दिन भी अपने को अचल अडोल विजयी आत्मा बना लिया तो ये आपके नेचुरल संस्कार बन जाएंगे, ये आपके लिए जैसे गिफ्ट वरदान हो जाएगा, है ना। और क्या बाबा ने कहा, फिर कुमारियों से संगठन में मुलाकात की, तो कुमारियां अर्थात हमेशा आगे रहने वाली, कुमारियां अर्थात हिम्मतवान, कभी रुकना नहीं है, बढ़ जाना आगे, और सदा नियमित निर्माण रहना है, सारे बोझ बाबा को दे देने हैं, पुरुषार्थ का बोझ, संबंधों का बोझ, और सेवा का बोझ, और संतुष्ट मणि कैसे बनना है वो तो है ही है। ओम शांति।